राम। ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध भाद्रपद कृष्ण षष्ठी संवत 2050 तदनुसार दिनांक 8 अगस्त 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम
भूलैया होता है, ऐसे सारे लखनऊ में एक मकान बना हुआ सुना है, मैंने देखा नहीं है। बड़ौदे में बगैचे में मेहंदी लगाई हुई है, वो मैं देखा है। मेहंदी लगाई है यूं और मटर तार बांधे मेहंदी है, ऊपर उल्लंघन न करे तो उसमें जावे तो भूल भुलैया मुझे भर जाता है। तो मेरे काम पड़ा तुम पेशाब काम कर बारे पूर्व लोहिया ऐसा है कि वो इस तरह चीज है भीतर जावे ना तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाए उसे, पर बाहर जरूर जाओ बोले रस्त होने वाले बाहर को निकलो बाहर जाऊ जाओ भीतर दिखे बाहर जाने दिखे बहुत बोले। तो वो फिर मैंने अध्ययन किया उसका, तो वो क्या है मैं तो फंस गया अभी बहुत वर्ष में बात है, बहुत वर्ष में बात तो ऐसी बात हो गई। तो उसमें फिर मैंने सोचा, सोचना क्या है कि सीधा रास्ता है ना, ना तो इधर जावे ना इधर जावे, ना इधर जावे ना इधर जावे, ना इधर जावे ना इधर जावे तो ठीक हो जाए। सोचा फिर देखा नहीं तुम्हारा काम ही नहीं पड़ा, बाहर तो आ गया उससे बड़े फिर क्या बात है। ये लखनऊ ऐसा मकान है सुना है भीत बना उड़ी ऐसी, तो अपने को परमात्मा की प्राप्ति करना है तो परमात्मा की प्राप्ति करने में जो रास्ता चलता है उस रास्ते में बाधा आती है भूल भुलैया। तो भूल भुलैया का अर्थ क्या है, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तजोर न वशमागत से तो यसे परिपंथन हो, ये बताया भूल भुलैया निकलने का रास्ता है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष है, अनुकूलता में राग है प्रतिकूलता में द्वेष है, ये व्यवस्था व्यवस्थित हो मानो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के राग द्वेष होते हैं, अनुकूलता में राग हुआ प्रतिकूल द्वेष होगा। तो राग और द्वेष हो गया तब तो भूल भुलैया में फंस गया, फिर अब निकलना मुश्किल होता है उसमें। भूल भुलैया ऐसा देखा निकलना बाहर बड़ा मुश्किल होता है, देखे बाहर निकलता है फंस है मेरे बीच में। तो राग और द्वेष मन में हो जाए, राजी और नाराजी हो जाए बस अब संसार फंस जाएगा, पर सब निकलने के नहीं। कितनी बातें बनाओ, कितनी जान लो, कितनी पढ़ाई कर लो, कितना ध्यान लगा लो, पर राग और द्वेष बस हुआ फंस ही जाएगा। वो पढ़ाई और वो ध्यान और आपका काम नहीं आ रहा उसकी, ऐसी बात है। तो क्या करे, राग द्वेष के वश में न हो गए, इंद्रिय से इंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष है। क्यों, प्रत्येक इंद्रिय का विषय होते में राग आता है द्वेष होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, क्या राग और द्वेष होता ही है। तो राग और द्वेष ऊंचा कैसे उठे, तो पहले निश्चय ये कर ले अपना कि हमें तो राग द्वेष से रहित तो होना है। ये तत्व तो जानना है, ज्ञान करना है, करना ये नहीं, अपने इतना ही राग द्वेष रहित होना तो इससे परिबंध हो भगवान ने कह दिया। तो राग द्वेष रहित कैसे हुए, तो अनुकूलता आवे वो सुख भोग के लिए नहीं है, वो राग रहित होने के लिए है। जो अनुकूलता आती है राग रहित होने के लिए। तो अनुकूलता में राग रहित कैसे हो गए, तो अनुकूलता आई है तो दूसरों हित करो, दूसरों की सेवा करो। आपके पास रुपया है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बातें हैं, समझ है, जो कुछ है वो अपने लिए भोग के लिए नहीं है, किंतु इससे ऊंचा उठने में कैसे है? दूसरों का हित करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। द्वेष आया है मैंने प्रतिकूलता आई है तो द्वेष करने के लिए नहीं है, प्रतिकूलता आई है विरक्त बनाने के लिए, अलग तो तटस हो जाओ। मानो प्रतिकूलता दिख है कि अनुकूलता नहीं मिली, यही तो प्रतिकूलता आई, और क्या ही है। भोजन मिला नहीं, भूख है और भोजन नहीं मिला, तो प्रतिकूलता आई। तो प्रतिकूलता आई है तो प्रतिकूलता दुख भोगना ही तो है भोग, प्रतिकूलता में दुखी होना ये तो है दुख का भोग। दुख का भोग भोग तो कभी उत्पन्नति नहीं देगा। ये सदैव याद रखो, सदा सिद्धांत रखो, भोग फंसाने वाला है, चाहे सुख का भोग हो चाहे दुख का भोग हो, भोग तो फंसाएगा ही, भोग नहीं होना चाहिए। तो दुख का भोग कैसे नहीं होगा, क्या दुख का भोग सुख की इच्छा का त्याग कर लिया ही है। दुखदायी परिस्थिति आई है सुख के भोग की इच्छा त्याग करने के लिए, इच्छा का त्याग कर तो दुख देखे से रह के बताओ। भूख लगी तो भोजन मिलना चाहिए, अब इच्छा ही छोड़ दी तो दुख कहा होगा। एक संत की बात सुने कि महाराज आप भोजन कहाँ मिलता है, भोजन भिक्षा कर लेते हैं, भिक्षा मिल जाती खा लेते हैं, कभी भिक्षा नहीं मिले तो कभी भूख को ही खा लेते हैं। अजब बात भाई, नहीं भिक्षा नहीं मिले भूख को ही खा लेते हैं, तो भूख को खाने का क्या, आज भोजन नहीं करना है, भगवान की ये मर्जी हो गई तो आज भोजन नहीं करना है, ठीक है। फिर कोई लावे तो भाई आज तो हम पा लिया, क्या पाई, भूख पा ली आज तो, अब नहीं। तो दुख है विरक्ति के लिए, त्याग के लिए, सुख की इच्छा का त्याग करने के लिए दुख आया है, सुख आया है दुखियों की सेवा करने के लिए। यह है परिस्थिति, परिस्थिति मात्र उन्नति के लिए है, सुखदायी आवे चाहे दुखदायी आवे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए परिस्थिति आई है। तो परिस्थिति जो कुछ आई है अनुकूल पड़ी दो ही होगा, और क्या होगा परिस्थिति में, किसी अंश में अनुकूलता किसी अंश में प्रतिकूलता, का केवल प्रतिकूलता का अनुकूलता, अनुकूलता में प्रतिकूल अंश अंश होते दोनों, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अंश होता है, अनुकूलता में प्रतिकूलता का अंश होता है, अंश सुख दुख दोनों होता है। तो सुख है वो दूसरों की सेवा करने के लिए है, दुख अपना विरक्त होने के लिए है। अब ध्यान दो, दोनों का अर्थ एक हुआ, दोनों का ही अर्थ एक हुआ, समझ आया कि नहीं। तो भाई देखो, सुख भोग हो जाए तो वो तो भोग पतन करने के लिए, विरक्त होने का मतलब है सुख दुख से ऊंचा उठ जाना। तो साधन कब होता है, सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, सुख दुख नीचे रह जाए आप ऊंचा उठ गए। योग दर्शन में आता है व्यास भाष्य में कि प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठाने शैलस्थ सर्वान प्राज्ञोनु पश्यति। बुद्धि आई अपने में, प्रज्ञा रितम भरा तत्र प्रज्ञा, रितम भरा रित्यमान सत्य को धारने वाली प्रज्ञा आई, तो प्रज्ञा रूपी हवेली के ऊपर चढ़ गया। प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य ऊपर चढ़ तो ऊपर चढ़ के क्या के जो अनुकूलता प्रतिकूलता आवे उसने अपनी विवेक शक्ति के द्वारा ऊंचा उठ जाए, तो सुख आया, सुखदायी सामग्री ये दुखियों की धरोहर है, ये अपना सुख भोगना नहीं है, दुखियों की सेवा करना है। आपके पास भोजन है, आपने भोजन कर लिया, अधिक भोजन है तो केवल दूसरों के भूखों के लिए ही है, संग्रह के लिए नहीं है। रुपया आया तो वो दूसरों का उपकार करने के लिए, जो भूखे हैं अभाव के से उनकी सेवा कर दो। तो सेवा कर देने से सुख सामग्री से भी त्याग हो जाए, उनसे उड़ जाओगा। दुख आया, सामग्री हमारे पास नहीं है, तो नहीं होने से हमें चाहना करने के सुख मिले तब तो हम भोगी हो गए, फंस गए। दुख होया उसमें विरक्त होगी, हमें सुख की इच्छा ही नहीं करना है, तो सुख से ऊंचे उठ गए, दुख से ऊंचे उठ गए, तो दोनों से ऊंचे उठ गए ना सुख दुख में। किसको नाम है समता, समत्वम योग उचित, योग हो गया। योग तभी होगा जब भोग नहीं होगा, भोग होगा तो योग नहीं होगा, योग होगा तो भोग नहीं होगा, तो भोग से ऊंचे उठ गए। तो दुख होने पर क्या आना चाहिए, दुख होने पर त्याग आना चाहिए, त्याग विरक्ति आनी चाहिए, कभी सुख की इच्छा ही नहीं करना। भगवान ने दुख क्यों भेजा है, सुख की इच्छा त्याग करने के लिए भेजा भगवान ने। देखो एक संत थे, उसने कहा कि अब जा रहे हैं, यहाँ बीकानेर की बात है, जा रहे हैं, फिर जब अंदर हो जब आ जाएंगे तो नहीं, अंदर नहीं होता, भगवान की मर्जी हो तो आ जाएंगे। अंदर के तो वे है फंसे हुए, जो राग द्वेष फंसे संसार फंसे हुए अंदर कहते हैं। हमारे तो भगवान की इच्छा से आता है, सुख आवे तो भगवान की इच्छा से, दुख आवे तो भगवान की इच्छा से, मिलना हो तो भगवान की इच्छा से, बिजना हो तो भगवान की इच्छा से। हम भोगी थोड़े हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं ना, तो भगवान के भक्त हो, भगवान जो करे वो ठीक है, उसमें प्रसन्न रहना है, मिलना हो तो ही प्रसन्न, बिजना हो तो ही। तो भगवान की कृपा है, तो भगवान ने सुख भेजा है वो सेवा करने के लिए भेजा है, या दुख भेजा है तो दुख की इच्छा, सुख की इच्छा त्याग करने के लिए। तो सुख भोग और सुख की इच्छा दो, ये तो फंसाने वाली चीज है। सुख की इच्छा, सुख को भोग, ये संगम त्यक्त्वा जो गीता में आया है, सुख की इच्छा का त्याग करना, सुख की आशा का त्याग करना, सुख के भोग का त्याग करना, तभी तो समता आएगी। यार दुख के भोग का भी त्याग करना, दुख के उनको दुखी होना भी नहीं आया, दुखी हो गया तो भोग हो गया, तो दुख कैसे नहीं हो गए। दुख आया है सुख से विरक्ति कराने के लिए, कि तुम ऊंचे उठ जाओ, दुखी मत हो, तो विरक्त हो जाएगा, और विरक्त हो जाएगा तो दूसरों पर भी कृपा होगी उसकी। अपने इच्छा नहीं है तो विरक्त होगा तो उसमें सहायता हो जाएगी, दूसरों की सेवा करने में, सुख सामग्री के त्याग में विरक्ति हेतु हो जाएगी, और विरक्ति दुख भोग से भी वो सुख आया है, उस सुख दूसरों को देने से सुख भोग से भी, माने दोनों का अर्थ एक होगा, सुख सामग्री का भी अर्थ एक होगा, दुख सामग्री का भी अर्थ एक होगा, मन दोनों से ऊंचे उठ जाएंगे हम, तो सुखी और दुखी नहीं होंगे। सुखी और दुखी होता है वो भोगी होता है, योगी सुखी दुखी नहीं होता है। देखो हम चलते हैं तो दाएं और बाएं दोनों पैरों से चलते हैं, एक पैर से कैसे चला जाए, एक पैर से चला नहीं जाता, दो पैरों पर ना चला नहीं जाता, एक टेकेगा एक चलेगा फिर वो उठाएगा वो टेकेगा, एक रखेगा एक उठाएगा, एक रखेगा एक उठाएगा, तभी तो चलोगे, नहीं तो कैसे चलोगे। ऐसे राग द्वेष जो संसार में आते हैं वे दोनों पैरों की तरह है, तो ऊंचा उठने के लिए है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए। तो परमात्मा तत्व को प्राप्त कब होंगे, के तयोर न बसमा कर से उनके वशीभूत न हो गए, सुख के सुखी हो गए तो सुख के वशीभूत हो गए, और प्रतिकूल में दुखी हो गए तो दुख के वशीभूत हो गए। तो वशीभूत कैसे नहीं हो, कि सुख सामग्री तो दूसरों के लिए आई है, और दुख भोग दुख प्रतिकूल परिस्थिति आई है, दुख से ऊंचा उठने के लिए, विरक्त होने के लिए। विरक्त कौन होता है, जो आसक्ति नहीं हुई विरक्त होता है, तो विरक्त बनाने के लिए दुख आया है, तो वृद्ध बढ़ाएगा तो सुख से ऊंचा जाएगा नहीं, दुख से सुख से दोनों से ऊंचा उठेगा, वृद्ध होना है। और जो सुख सामग्री आई है उसमें दूसरों का उपकार करेगा तो सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठेगा उसमें भी। एक एक चीज दोनों से ऊंचा उठाने के लिए आई है, ख्याल है ना। मनु सुखी दुखी नहीं होना है, किंतु सेवा करना है और अपने भोग नहीं भोगना है। ये खास सुख का भोग भोगना नहीं है, सुख दूसरों की सेवा के लिए या दुख अपने त्याग के लिए। ये मानो अपने सुख की इच्छा ही नहीं रखना है, तो इच्छा ही नहीं रखेगा वो तो विरक्त होगा त्याग की। और क्या विरक्त क्या होता है, जो चाहना नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा। तो पदार्थ हो गए तो भी चाहना रहित होना है, पदार्थ न हो तो चाहना रहित होना है, चाहना रहित होना है तो चाहना रहित सुख है। सामग्री वो दूसरों की सेवा करे तो चाहना रहित हो जाएगा, दुख आया तो सुख की चाहना रहित हो जाए। तो सुख की चाहना से रहित होना, दुख आ जाए तो दुख के भोग से रहित होना, दुखी सुखी नहीं होना, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, दोनों सम हो जाएंगे। सुखदायी परिस्थिति आवे चाहे दुखदायी परिस्थिति आवे, दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, अर्थात साधन सामग्री है। कुशल विवरण कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन नहीं पर लोग समारा। मनुष्य शरीर है, साधन धाम है, तो साधन धाम कैसा हुआ, सुख आवेगा तो दुख आवेगा, तो सुख में भी हम ऊंचे उठ जाए दुख में भी ऊंचे उठ जाए, तो साधन वन दुख दुख दोनों ही। हम लोगों ने भजन ध्यान करना ये साधन माना है, तो ये तो हमारा किया हुआ साधन है, और सुख दुख परिस्थिति आवे भगवान का भेजा हुआ साधन है। अपना किया हुआ साधन है उससे भगवान का भेजा हुआ साधन ऊंचा है। अपने करने में तो कहीं भूल भी हो जाए, पर भगवान के विधान में भूल नहीं होती। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति भगवान की भेजी हुई है, इस वास्ते है उनका उपयोग करना है। क्या करना है, कहीं सुखदायी सामग्री है उससे ऊंचा उठना है, तो वो सुखदायी सामग्री सेवा करने के लिए, सुख भोग के लिए नहीं है। दुखदायी सामग्री आई तो दुखदायी जो परिस्थिति आई है वो सुख की इच्छा मिटाने के लिए। तो पदार्थों का भोग नहीं करना और पदार्थों की इच्छा भी नहीं करना, पदार्थ मिले इच्छा भी नहीं करना, फिर सुख हो तो भोग भी नहीं करना, तो योग्य हो जाओगे, फिर सुख दुख समता हो जाएगी। चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ, अपने भोग सुख का ही नहीं करना, दुख का ही नहीं करना, तो समता आ जाएगी नहीं। और समतम योग उचित है, समता का नाम है योग, ऊंचे उठ जाएंगे। तो सुख दुख दोनों ही ऊंचा उठने के लिए आए हैं, भोगी होने के लिए नहीं आए हैं। ये भगवान का विधान होता है वो मात्र जीव के कल्याण के लिए होता है, एक बात बड़ी मार्मिक। मनुष्य काम करता है तो साधक होता है, वो सावधान होता है, शास्त्र विहित काम करता है, साध निषिद्ध काम नहीं करता, ये उसकी साधना है। अब विहित काम करता है निषिद्ध नहीं करता, तो करने में तो साधन हो गया, पर आने में साधन कैसे होगा। सुखदायी आई परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति आई, ये तो हमने बुलाई नहीं है, ना सुखदायी बुलाई, ना सुखदायी आती है, ना दुखदायी मिटती नहीं है। तो ये आई हुई सुखदायी दुखदायी परिस्थिति साधन सामग्री है, ये भगवान का भेजा हुआ साधन सामग्री है। ये तो सुखदायी में सुख नहीं भोगे, दुखदायी में दुख ही न होगा। तो तय और न बस मागते न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। प्रिय को प्राप्त होकर के प्रसन्न नहीं होए, अप्रिय को प्राप्त करे उद्विग्न न होए, दोनों ऊंचा उठे। तो सुखदायी परिस्थिति है वो दुखदायी परिस्थिति है, दोनों ही वृक्त बनाने के लिए है, दोनों से ऊंचा उठाने के लिए है। एक बात और याद आ गई, सुख और दुख इनके दो अर्थ होते हैं, ये आदमी बड़ा सुखी है, ये आदमी बड़ा दुखी है। तो सुख के भी दो अर्थ हैं, दुख के भी दो अर्थ हैं। सुख के दो अर्थ क्या है कि सामग्री बहुत हो तो उस आदमी कहते हैं बड़ा सुखी है, जिसमें सामग्री नहीं, खाने की रोटी नहीं, पहनो कपड़ा नहीं, अभाव बड़ा दुखी है। एक तो सुख दुखी है परिभाषा है, एक चित्त में प्रसन्न है और सुखी है, और चित्त में दुखी है, खिन्न है, वो दुखी है। तो भीतर का सुख दुख होना सुख दुख होना है, और बाहर की सुख दुख सामग्री नाम सुख दुख है। तो बाहर की सुख दुख सामग्री है वो वास्तव में सुख दुख नहीं है। सुख दुख तो भीतर से राजी नाराजी होना, ये है, ये बंधन बाहर की परिस्थिति बांधते नहीं है। तो दोनों में ऊंचा उठ जाए तो सुखदायी परिस्थिति ऊंचा कैसे उठे कि सुख की इच्छा त्याग दे, सुख का त्याग कर दे, दुख में कैसे सुख सुख की इच्छा त्याग कर दे। तो दोनों से ऊंचे उठ गए तो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धा युद्धस्व नैवं पापमावशेषि। तो सुख दुख के समान कर दोनों ही, क्यों भोग के लिए है ही नहीं, ना सुख भोग के लिए शरीर है, ना दुख भोग के लिए शरीर है। इस वास्ते दुख आ जाए तो दुखी नहीं हो, सुख हो जाए तो सुखी नहीं हो। इस वास्ते दुख आ जाए जो प्रसन्न हो जाए खूब मौज से के पाप नाश हो रहे हैं और सुख की स्थापन करनी नहीं है। सीधी बात एक है तो दुख से ऊंचा उठ जाएगा। सुख में प्रसन्न होना, प्रसन्न क्या हो तो सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं, क्यों शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, सुख भोग करने के लिए नहीं है। इस वास्ते दोनों से ऊंचा उठ जाए तो विरक्त हो जाए, त्यागी आ जाए तो समता आ जाए। समत्वम योग सिद्धि सिद्धि और समो भूतवा समत्वम योग सिद्धि असिद्धि में सम रह जाए तो समता का नाम योग हो गया। तो सुख में दुख में दोनों समान रहे, ना सुखी होवे ना दुखी होवे। तो सुख का प्रयोग तो दूसरों की सेवा के लिए, दुख का प्रयोग थे विरक्त होने के लिए। तो समझा जाए नारायण 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 नारायण। तो साधक को नहीं योगी नहीं भोगी होवे, यूँ करो कि भगवान का भेजा आवे है का पे आवे, सुख दुखदायी तो आवे है भगवान का भेजोड़ा आवे है ना, तो भेजोड़ा आवे तो साधन करने के लिए आया है। सो सुख सुखदायी सामग्री है तो दूसरा ने सुख पहुँचाओ, दुखदायी सामग्री है तो सुख इच्छा छोड़ दो। हमें बात कही जगह समझ में आई कि नहीं।